एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दौर की जब दुनिया का एक महान गणराज्य रोमन रिपब्लिक उथल पुथल से गुजर रहा था, और उस दौर की एक बुलंद आवाज थे मार्कस टुलियस सिसरो।
बिल्कुल,
मैं हूं मेजबान सात
और मैं हूं मेजबान एक।
आज हम सिसरो के कुछ बेहद प्रभावशाली राजनीतिक भाषणों के सार पर गौर करेंगे। ये ऐसे भाषण हैं जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि आज भी हमें लीडरशिप, अच्छे संवाद और हाँ, लोकतंत्र की रक्षा पर बहुत कुछ सिखाते हैं।
सही कहा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन्हीं भाषणों पर आधारित हैं और दिखाते हैं कि कैसे शब्दों की ताकत से, मतलब सही तर्क और भाषा से, भ्रष्टाचार और तानाशाही का मुकाबला किया जा सकता है।
तो सवाल उठता है कि भाई 2000 साल पहले के रोमन नेता की बातें आज क्यों अहम हैं?
देखिए, शायद इसलिए कि जो चुनौतियां सिसरो ने देखी, लोकतंत्र पर खतरा, भ्रष्टाचार, सत्ता का गलत इस्तेमाल, वो आज भी दुनिया के कई हिस्सों में अलग अलग रूपों में मौजूद हैं, है ना? तो सिसरो के अनुभव हमें इन खतरों को समझने में मदद कर सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, तो चलिए पहले ये जानते हैं कि ये सिसरो थे कौन। मार्कस टुलियस सिसरो 106 से 43 ईसा पूर्व, क्या वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन थे?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक वकील थे, एक दार्शनिक, एक विचारक और शायद शायद रोमन इतिहास के सबसे महान वक्ता।
और दिलचस्प बात ये भी है कि वो किसी पुराने रसूखदार खानदान से नहीं थे।
हाँ, उन्हें नोवोस होमो कहते थे, नया आदमी। मतलब वो अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़े थे। और उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी भाषा पर पकड़, लैटिन भाषा पर, और भाषण देने की कला, जिसे रिटोरिक कहते हैं।
सही, और ये सिर्फ बोलने की कला नहीं थी, उन्होंने बकायदा पढ़ाई की थी, ग्रीक फिलॉसफी, रोमन कानून, और तो और उन्होंने खुद डियोरेटोरे जैसे ग्रंथ लिखे जिसमें उन्होंने सिखाया कि अच्छा भाषण कैसे दिया जाए। वो जानते थे कि शब्दों में कितनी ताकत होती है।
लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि वो सिर्फ किताबी बातें नहीं करते थे, वो एक्शन में थे। रोमन गणराज्य जब ढहरा था तो वो सिर्फ किनारे खड़े होकर तमाशा नहीं देख रहे थे, वो उस कहानी के एक मुख्य किरदार थे।
हाँ, कौंसुल के पद पर रहते हुए उन्होंने कैटलिन की साजिश को नाकाम किया।
बिल्कुल, उन्होंने भ्रष्टाचार, तानाशाही, राजनीतिक गिरावट, ये सब बहुत करीब से देखा और अपने भाषणों से उसका सामना किया।
उनकी बातों में वजन उनके अपने तजुर्बे से आता था।
अच्छा, तो अब उन भाषणों पर आते हैं जिनका सार हमारे पास है। ये हमें रोमन गणराज्य के आखिरी बहुत ही अशांत दशकों में ले जाते हैं, करीब 70 ईसा पूर्व से 43 ईसा पूर्व तक का समय। और इन भाषणों का मकसद क्या था? देखिए, ये सिर्फ पुराने किस्से नहीं हैं, ये एक तरह से सबूत हैं कि कैसे असरदार सिद्धांतों पर टिकी हुई भाषण कला, जिसे हम रिटोरिक कह रहे हैं, वो संवैधानिक शासन को, न्याय को, कानून के राज को बचा सकती है।
किससे बचा सकती है?
भ्रष्टाचार से, तानाशाही से, राजनीतिक गिरावट से। सिसरो के लिए शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं थे, वो लोकतंत्र बचाने के हथियार थे।
हाँ, और केंद्रीय विचार यही है कि अगर आपकी भाषण कला नैतिकता और संवैधानिक उसूलों पर आधारित है तो वो लोकतंत्र की सबसे मजबूत ढाल बन सकती है। सिसरो ये दिखाते हैं कि हिम्मत और सच्चाई से कहे गए शब्द वाकई इतिहास बदल सकते हैं।
बिल्कुल, वो भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर सकते हैं, नागरिकों को जगा सकते हैं कि भाई अपनी आज़ादी बचाओ। उनके लिए रिपब्लिक, मतलब गणराज्य, कोई बनी बनाई चीज नहीं थी, वो एक लगातार चलने वाली बातचीत थी, एक बहस।
सही कहा, और ये जो संग्रह है ये हमें उनके पूरे करियर की एक झलक दिखाता है। शुरू में वो एक युवा वकील के तौर पर भ्रष्ट गवर्नर वेरिश को बेनकाब करते हैं,
फिर कौंसुल बनकर कैटलिन की खतरनाक साजिश का सामना करते हैं,
फिर उन्हें देश निकाला मिलता है, वो वापस आते हैं,
और आखिर में मार्क एंटनी की तानाशाही के खिलाफ उनका वो आखिरी संघर्ष, फिलिपिक्स। ये वाकई एक व्यक्ति और एक गणराज्य के उतार चढ़ाव की कहानी है।
तो चलिए कुछ खास भाषणों और उनसे जुड़े मामलों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं 70 ईसा पूर्व के इन वेरिम से, यानी वेरिस के खिलाफ दिए गए भाषणों से। ये उनके करियर का एक बड़ा मोड़ था।
हाँ, गायोस वेरिस सिसली का गवर्नर था और उसने मतलब प्रांत को निचोड़ डाला था। कलाकृतियां चोरी की, पैसे वसूले, यहां तक कि रोमन नागरिकों को भी भयानक सजाएं दी। तो सिसली के लोगों ने सिसरो को अपना वकील चुना।
और यहां सिसरो की रणनीति कमाल की थी। उन्होंने कोई लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बांधी,
नहीं, सीधे फैक्ट्स, गवाह पेश करना शुरू कर दिया। लूटे हुए मंदिर, वसूली गई विरासतें, नाइंसाफी से दी गई मौतें, इतने पक्के सबूत थे
कि वेरिस डर के मारे भाग गया। मुकदमा खत्म होने से पहले ही रोम छोड़कर भाग गया।
सोचिए, इस केस ने सिसरो को रातों रात रोम का टॉप का वक्ता बना दिया। ये सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं थी, ये भ्रष्टाचार पर और प्रांतों के अधिकारों के हक में एक बड़ी नैतिक जीत थी।
ये दिखाता है कि सच्चाई और सबूतों में कितनी ताकत हो सकती है अगर उन्हें सही ढंग से पेश किया जाए।
बिल्कुल, और इसी जीत ने उन्हें आगे कौंसुल बनने में मदद की 63 ईसा पूर्व में, और यहीं उनका सामना हुआ सबसे बड़े चैलेंज से, कैटलिन की साजिश।
हाँ, लूसियस सर्जियस कैटलिन, एक महत्वाकांक्षी आदमी, लेकिन कर्ज में डूबा हुआ। वो एक खूनी तख्ता पलट करके सत्ता हथियाना चाहता था। सिसरो उस वक्त कौंसुल थे और उन्होंने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया,
और इसके लिए उन्होंने वो चार मशहूर भाषण दिए इन कैटलिनम। पहले भाषण में तो गजब ही कर दिया। कैटलिन सीनेट में बैठा था और सिसरो ने उसी के मुंह पर उसकी पूरी प्लानिंग खोलकर रख दी,
और वहीं वो चिल्लाए थे, ओ टेम्पोरा ओ मोरिस। हाँ,
क्या जमाना आ गया है, क्या नैतिकता रह गई है। मतलब उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक जाना माना गद्दार सबके बीच बैठा है।
हाँ।
ये सिर्फ कैटलिन पर नहीं, पूरे माहौल पर गुस्सा था।
सही।
फिर जब कैटलिन भाग गया तो दूसरा भाषण जनता के नाम, अपने एक्शन को सही ठहराने के लिए। फिर तीसरा भाषण जब बाकी साजिश करने वाले पकड़े गए, सबूत पेश करने के लिए।
और चौथा भाषण सीनेट में था इस बहस पर कि पकड़े गए लोगों को क्या सजा दी जाए।
और यहीं वो मुश्किल सवाल आया, क्या देश बचाने के लिए नागरिकों को बिना मुकदमे के मौत की सजा दे सकते हैं?
हाँ, ये बहुत बड़ा नैतिक संकट था।
सिसरो ने यहां तर्क दिया,
सेलेस पोपुली सुप्रीमा लेक्स एस्ट,
जिसका मतलब है जनता की भलाई ही सबसे बड़ा कानून है। उनका कहना था कि भाई, खतरा इतना बड़ा है कि राज्य की सुरक्षा सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं से ऊपर है।
इस फैसले ने उन्हें राष्ट्रपिता का खिताब तो दिलाया, पर इसी वजह से बाद में उन्हें रोम छोड़कर जाना पड़ा, देश निकाला मिला। यह हमें हमेशा याद दिलाता है कि सुरक्षा और नागरिक अधिकार, इनके बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल है, कितना जरूरी है।
और देखिए, इसी बहस में एक और बात छिपी है। जो सिसरो बार बार कहते थे, वो डरते थे कि असली खतरा बाहर से नहीं, अंदर से।
हाँ, महत्वाकांक्षी नेता, भ्रष्ट लोग, कानून तोड़ने वाले, गणराज्य को खतरा इन्हीं से है। उनका मानना था कि आजाद मुल्क अक्सर अंदरूनी झगड़ों से ही खत्म होते हैं।
ये बात तो आज भी एकदम सटीक लगती है, नहीं, जब हम समाज में बंटवारा देखते हैं या नेताओं की असीमित महत्वाकांक्षा। खैर, कैटलिन के बाद भी रोम शांत नहीं हुआ, पॉलिटिकल वायलेंस बढ़ता गया।
और इसी माहौल में आया 52 ईसा पूर्व का प्रो मिलोने केस। सिसरो के एक साथी थे मिलो, उन पर अपने राजनैतिक दुश्मन क्लोडियस की हत्या का इल्जाम था।
आदमी को मारना शायद देशभक्ति भी हो सकती है।
सोचिए, कानून का सबसे बड़ा हिमायती ये कह रहा था। ये दिखाता है कि संस्थाएं कितनी कमजोर हो गई थीं।
बिल्कुल, जब इंसाफ सड़कों पर होने लगे, हिंसा को सही ठहराया जाने लगे, तो समझ लीजिए कि सिस्टम ढहने वाला है। और आखिर में वही हुआ, जूलियस सीजर की तानाशाही आई, फिर उसकी हत्या हुई और फिर सत्ता के लिए जंग छिड़ गई।
और इस जंग में सबसे आगे था मार्क एंटनी। तब एक बूढ़े हो चुके सिसरो ने गणराज्य को बचाने की अपनी आखिरी और सबसे हिम्मत वाली लड़ाई लड़ी। उन्होंने एंटनी के खिलाफ 14 भाषणों की एक सीरीज दी, फिलिपिक्स।
ये उनके सबसे तीखे, सबसे बेबाक भाषण थे। उन्होंने एंटनी को एक जालिम, भ्रष्ट, शराबी तानाशाह बताया और सीनेट और जनता से कहा कि इसके खिलाफ खड़े हो जाओ। वो जानते थे कि वो अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं।
और हुआ भी वही। एंटनी ने ऑक्टेवियन, जो बाद में ऑगस्टस सम्राट बना, के साथ मिलकर सिसरो को मरवा दिया। उनके कटे हुए सिर और हाथों को रोम के मेन चौराहे पर लटकाया गया था।
एक भयानक अंत। ये सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं थी, ये आजाद आवाज का और शायद खुद गणराज्य का अंत था।
वाकई, लेकिन सिसरो के शब्द उनकी मौत के बाद भी जिंदा रहे। इन भाषणों से कुछ बड़े सबक या थीम्स उभरते हैं, है ना?
हाँ, बिल्कुल। सबसे पहली बात तो है गणराज्य की सर्वोच्चता, रेस्पुब्लिका। सिसरो के लिए ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं था, ये एक नैतिक विचार था जो कानून, परंपरा और नागरिकों की जिम्मेदारी पर टिका था। उनका मानना था कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हमेशा देशहित से नीचे होनी चाहिए।
दूसरी बात, भाषण कला यानी रिटोरिक की ताकत और जिम्मेदारी। सिसरो दिखाते हैं कि शब्द कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, सच बताने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, अन्याय से लड़ने के लिए।
लेकिन वो ये भी चेतावनी देते हैं कि इसी कला का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, भड़काने के लिए, बांटने के लिए, धोखा देने के लिए, जैसे उनके दुश्मन करते थे। आज के जमाने में ये कितनी जरूरी बात है, सोशल मीडिया, फेक न्यूज।
बिल्कुल। तीसरा अहम मुद्दा है कानून और जरूरत के बीच का वो शाश्वत संघर्ष। कैटलेन वाला मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या राज्य बचाने के लिए कानून तोड़ सकते हैं? इसकी हद क्या है?
हाँ, ये सवाल आज भी सरकारों के सामने आता है जब वो इमरजेंसी पावर या सर्वेलेंस की बात करती हैं। संतुलन कहाँ है?
चौथा, बेलगाम महत्वाकांक्षा और तानाशाही का खतरा। चाहे वो वेरियस का लालच हो, कैटलिन का जुनून या एंटनी की सत्ता की भूख, सिसरो दिखाते हैं कि जब कोई व्यक्ति खुद को कानून और देश से ऊपर समझने लगता है तो लोकतंत्र की छैर नहीं।
और पांचवा, चरित्र का महत्व। सिसरो के लिए राजनीति सिर्फ पॉलिसी की लड़ाई नहीं थी, ये चरित्र की भी लड़ाई थी। वो मानते थे कि एक बुरे चरित्र का आदमी अच्छा नेता नहीं हो सकता, इसीलिए वो अपने विरोधियों के तर्कों के साथ साथ उनके कैरेक्टर पर भी हमला करते थे।
अच्छा, इन भाषणों में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो अमर हो गई हैं, जैसे हमने पहले जिक्र किया, ओ टेम्पोरा ओ मोरेज।
हाँ, ओ जमाना ओ नैतिकता, ये आज भी इस्तेमाल होता है जब लोग अपने समय की नैतिक गिरावट पर अफसोस जताते हैं।
या फिर वो सवाल, कुई बोनो,
यानी किसके फायदे के लिए। ये रोसियस केस में पूछा गया था, लेकिन आज भी किसी भी जांच का, चाहे वो क्राइम हो या कोई स्कैंडल, ये पहला सिद्धांत है, पता करो फायदा किसे हो रहा है।
सही। और वो सिद्धांत सेलुस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स एस्टो, जनता का कल्याण सर्वोच्च कानून हो, सुनने में कितना अच्छा लगता है।
हाँ, पर खतरनाक भी है। इतिहास गवाह है, इसी नारे की आड़ में कई बार नागरिक अधिकारों को रौंदा गया है। ये दोधारी तलवार है वाकई।
और एक भाव जो बार बार आता है वो है, दुश्मन दीवारों के भीतर है।
बिल्कुल। सिसरो का सबसे बड़ा डर बाहरी हमलावरों से नहीं, बल्कि अंदरूनी सड़न और गृह युद्ध से था। सबसे बड़ा खतरा अपने ही नागरिकों से होता है, महत्वाकांक्षी नेताओं से, भड़काने वाले लोगों से।
तो ये सब पुरानी बातें आज हमारे किस काम की हैं?
मेरे ख्याल से बहुत काम की। सबसे पहले तो पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन के लिए सिसरो की तकनीकें तर्क, लोगोस, भावना, पैथोस और वक्ता की विश्वसनीयता, ईथोस का इस्तेमाल कैसे करें, अपनी बात कैसे रखें, सवाल कैसे पूछें, ये सब आज भी बहुत काम आ सकता है।
हाँ, चाहे आप नेता हों, वकील हों, या बस अपनी बात रखना चाहते हों। और लीडरशिप और पॉलिटिक्स के लिए तो ये एक तरह की केस स्टडी है।
बिल्कुल। संकट के समय कैसे फैसले लें, जैसे केटलिन मामले में, लोकतंत्र के दुश्मनों को कैसे पहचानें, चाहे वो भ्रष्ट वेरस हो, लुभावने वादे करने वाला कैटलिन या तानाशाह एंटनी। और सबसे जरूरी, संस्थाओं का सम्मान क्यों जरूरी है। सिसरो का सीनेट और अदालतों को बचाने का संघर्ष हमें यही याद दिलाता है।
वकीलों के लिए भी सिसरो आज भी प्रासंगिक है। कोर्ट में कैसे बहस करें, अपने क्लाइंट के लिए सहानुभूति कैसे बनाएं, विरोधी के तर्कों को कैसे काटें।
हाँ, ये सब गुण उनसे सीखे जा सकते हैं। और शायद सबसे गहरा सबक व्यक्तिगत नैतिकता और साहस का है। सिसरो की जिंदगी ये सवाल खड़ा करती है, जब आपके सिद्धांत आपकी जान के दुश्मन बन जाएं, तब आप क्या करेंगे।
उनका वो फिलिपिक्स लिखने का फैसला, ये जानते हुए कि अंजाम मौत हो सकता है, ये वाकई नागरिक साहस का एक बेमिसाल उदाहरण है।
हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक नागरिक के तौर पर हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या हम में सत्ता के सामने सच बोलने की हिम्मत है।
एक ये है कि लोकतंत्र कोई बनी बनाई पक्की चीज नहीं है, ये बहुत नाजुक है, इसे लगातार बातचीत, बहस और हाँ, हिम्मत से जिंदा रखना पड़ता है।
सही कहा। किसी भी समाज की सेहत इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ सच कितना बोला और सुना जाता है।
मेरे लिए एक और जरूरी बात यह है कि शायद सिर्फ अच्छी बातें करना या तर्क देना ही काफी नहीं होता। सिसरो इतने महान वक्ता थे, फिर भी वो गणराज्य को बचा नहीं पाए।
हाँ, शायद इसलिए कि जब समाज में असमानता, बंटवारा और सत्ता की हवस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो शायद शब्द भी बेअसर होने लगते हैं। ये सोचने वाली बात है।
लेकिन फिर भी सिसरो का प्रयास बेकार नहीं गया। उनके भाषण हमें याद दिलाते हैं कि आजादी को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, जागरूक नागरिक, कानून का राज और ऐसे नेता जिनमें सोचने की समझ और सही काम करने की हिम्मत हो।
बिल्कुल। उनका जीवन दिखाता है कि सिद्धांतों के लिए खड़े होना, चाहे नतीजा कुछ भी हो, लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है। आवाज उठाना जरूरी है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।